श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 24 दिनांक 20 मार्च 2015 वक्ता कुमदास प्रभु।
नुन्ना प्रेरित भूतेभ्य सारे जीवों के लिए च तथा अमृतम अमृततुल्य जल घना बादल यथा जिस तरह आशीष दातव्य आशीर्वाद बीटपतय राजा काले काले समय समय पर दीज ब्राह्मणों को द्वारा इरिता पेरित। इसका आगे का श्लोक भी है। जलो घने निरभिन्दंत सेतोवि वर्षतिश्वरे पाषंडी नाम सद्वादिर वेदो मार्गो कलो यथा। अनुवाद, जब इंद्र ने अपनी बरसात भेजी तो बाढ़ के पानी से खेतों की सिंचाई के बांध उसी तरफ टूट गए जिस तरह कलियुग में नास्तिक के सिद्धांतों से वैदिक आदेश के सीमाओं टूट जाती है। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद जी का शिष्य के द्वारा। बाबू द्वारा प्रेरित बादल ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृततुल्य जल उसी तरह मुक्त किया जिस तरह राजागण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेश अनुसार अपनी प्रजा में दान बांटते हैं। श्री प्रभुपाद की टीका है, वर्षा ऋतु में बाबू द्वारा उछाल गए बादल जल प्रदान करते हैं जिसका स्वागत अमृत के समान होता है। जब वेदों के अनुयायी ब्राह्मणगण राजा तथा धनी व्यापारी जैसे समृद्ध व्यक्तियों को बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करने के लिए दान देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो ऐसे संपत्ति का वितरण भी अमृततुल्य होता है। मानव समाज के चातुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पारस्परिक सहयोग से शांतिपूर्वक रहने के लिए है, किंतु ऐसे तभी संभव है जब उनका मार्गदर्शन ऐसे कुशल वैदिक ब्राह्मण करे जो यज्ञ करते हो और धन का समान वितरण करे। जिसका पास संपत्ति है उनको दान करना चाहिए। तुम्हार कनक भोगेर जनक कनकेर दारे सेव माधव कामिनीर काम नहे तब धाम ताहार मालिक केवल जादव। ये भक्ति सिंह ठाकुर का पोएट्री है, उन्होंने लिखा है। तुम्हार कनक भोगेर जनक, जिसके पास पैसा नहीं है वो भोग नहीं कर सकता है, जिसके पास है वो कर सकता है। भोग विविध प्रकार का होता है, दान अमृततुल्य होता है। भोग नरक का दार है, दान स्वर्ग का दार है। और वही दान अगर विष्णु और वैष्णव में किया जाए तो वैकुंठ का दार होता है। ये दान का कहा गया है। तो जब वैदिक ब्राह्मण का आदेश अनुसार राजा ऐसे कार्य करे तो क्या होता है, अमृततुल्य हो जाता है। जैसे जब खरा होता है, जो बोलते हैं ना, बारिश नहीं हुआ, खेती नहीं हुआ, तो लोग अनाज के लिए तरसते रहते हैं। उस समय अगर गवर्नमेंट का तरफ से कुछ सहूलत दे दिया जाता है तो लोग खुशी हो जाते हैं, चलो अभी कम से कम तो अनाज तो मिल रहा है, तो लोग खुश रहते हैं। उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति अपना धन का उपयोग दुखी दरिद्र में बांटते हैं तो लोग आशीर्वाद करते हैं। और यही वस्तु जो भगवत सेवा में लगाता है तब गीता में श्लोक है, जत करोसी जजो नासी जजो होशी जिदास जत जो तपस्वी कौनते हो तत्पुरुष मदर्पण, जो भी दान देते हो मुझे दिया करो, बाकी अर्थ तो आप लोग जानते हो। जो भी दान देना है वो मुझे दिया करो, भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं है जो भगवान गरीब को बांटने के लिए मना किया है, गरीब को भी दो, ऐसा नहीं है। जिसका दुख है, जिसका ये है, उनका भी अगर है तो उनको भी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। किस प्रकार से आप, जैसे किसी का लड़की का शादी नहीं हो रहा है, उसको कुछ पैसा दिया, लड़की का शादी हो गया। किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, उस कुछ पैसा दिया, उसका पढ़ाई हो गया। किसी का ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसको थोड़ा पैसा दिया, उसका ट्रीटमेंट हो गया। ये स्वाभाविक दान धर्म है, ये दाता को करते रहना चाहिए। जय श्री श्री गुरु गौरांग। इसमें अगर कोई व्यक्ति परानमुख होता है वा विमुख होता है तो उसका धन कोई कार्यों में नहीं लगता है। एक बांग्ला में कहावत है, कृपणेर धनेर द्विगुण बोए तबु कृपणेर जोश ना होए। जो किपटा होता है ना, किपटा जो खर्चा नहीं करना चाहता है, उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी उस कृपण व्यक्ति कोई प्रशंसा नहीं करते, अरे ये तो कृपण है, इसको क्या बोलेंगे, इसको जा करके कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे तो मक्खी चूसे है, मक्खी चूस हाथ से कुछ गलने वाला भी नहीं है, ऐसे कहते हैं लोग। तो अगर है किसी के पास तो उसको दान करना चाहिए, अगर नहीं है तो भाषा का दान करना चाहिए, बागदान, मिष्ट भाषा बोलना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति दुखी ना हो। तो यहाँ ये दान का जो रीति है, तो ये रीति हिसाब से दान करना चाहिए, और इस प्रकार दान के द्वारा सारा जगत का भी कल्याण हो जाता है। जैसे मंदिर मिलेगा कोई दान जितना व्यक्ति कर रहे हैं बा किया है, जो भविष्य में जो करेगा वो सबके लिए कल्याणकारक है, क्योंकि ये वैकुंठ का द्वार है। मंदिर किस लिए बनाता है? आचार्य को कोई कामधाम है नहीं क्या जो मंदिर बना के देने का? ऐसा नहीं है। आचार्य मंदिर इसलिए बनाते हैं जो सांसारिक जीव यहाँ आकर के दो मिनट बैठेगा तो उनको शांति मिलेगा, और क्या होगा, अनिच्छाकृत हाथ जोड़ के भगवान को अपना दुख निवेदन करेगा। भगवान निर्विकार बैठा हुआ है तो उसको अगर कुछ बोलेगा नहीं तो सुनेगा किधर से? क्या भगवान अपने आप ला के दे देगा क्या? चाणक्य पंडित एक श्लोक कहते हैं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग्या उद्यमेन नहीं सिद्धन्ति नहीं कार्यानि मनोरथ। अगर लायन चुपचाप आग मुद का हा करके सोती रहे तो हरिन उसका मुंह में आगे घुस जाएगा क्या? वो भी घुसने वाला नहीं है, लायन को भागना पड़ेगा हरिन का पीछे, तो भगवान का सामने आके बोलना पड़ेगा जो हमारा ये दुख है, और ये दुखो निवेदनो, दुख का निवेदन करना चाहिए। तो भगवान के साथ जब दुखों का निवेदन करेगा तो भगवान सुन के, ये रोज रोज हमें कुछ बोलते ही रहते हैं, चलो इसके कुछ बंदोबस्त करिए, अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं करेगा। इसे नास्तिक लोग भगवान को मानते भी नहीं हैं और बोलते उनके पास जाने का जरूरी क्या है। वास्तव में जीव को अपना किए हुए कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। अगर अगला जन्म में हमें कुछ अच्छा कर्म किया है तो इस जन्म में मुझे कुछ सुविधा मिल सकता है। जैसे गीता कहते हैं, सुचिनांग श्रीमतांग गेहे जोग भ्रष्ट अभिजायते। आज ये बड़ा बड़ा धनी लोग, बहुत सारे करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन उनको भी देखो, वो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। एक दिन ऐसा आएगा जो पूरा विश्व अरबपति का अंडर में रहो, पूरा मनुष्य उसको अंडर में रहना पड़ेगा, कि अरबपति के पास इतना पैसा हो जाएगा, इतना पैसा हो जाएगा जो बाकी सब लोग उनका अंडर में रहेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। अगर वही अरबपति अपना जो संपत्ति उनका 1% भी की दान कर देता है तो अब पूरा पृथ्वी में जो भूखमरी है वो चला जाएगा। तो लोगों के पास इतना पैसा है, इसलिए गीता भागवत क्या कहते हैं, ये संपत्ति है तो भगवत सेवा में उपयोग करो। अगर भगवत सेवा में उपयोग करोगे तो तुम्हारा संपत्ति का कल्याण होगा। तुम्हारा कनक भोगेर जनक कनकेर द्वारे सेव माधव। तुम्हारा जो कनक है, कनक मीन पैसा, संपत्ति सोना, वो भोग के लिए है, लेकिन उससे अगर तुम माधव का सेवा करोगे तो तुम्हारा मुक्ति का द्वार बन जाएगा। ये तो भी संभव हो सकता है जब वैदिक ब्राह्मण का आदेश हिसाब से राज्यों का परिचालन किया जाए। आप लोग ये भी अभी समय कुछ समय पहले भारत का जो तदानतीन राजा था धनाढ्य राजा धनानंद, उनको हटाने के लिए चाणक्य ने क्या किया, चंद्रगुप्त को खड़ा किया, और एक ही चंद्रगुप्त ने पूरा भारतवर्ष का नक्शा ही बदल दिया। ये ब्राह्मण का कार्यशैली होता है। एवं विधा ब्राह्मण अगर हो तो क्या करेगा, पूरा संसार को चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आपस में लड़ने वाला ब्राह्मण हो तो कुछ काम का नहीं होगा। शास्त्र कहते हैं दुस्संग कहिए तारे आत्मवंचना, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। दुस्संगे कहिए कैतव आत्मवंचना, दुस्संग उसे कहते हैं कैतव, कैतव शब्द छलना, छलने का जो रीति है वो सोचते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका आत्मवंचन क्या है, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना। जो व्यक्ति कृष्ण और कृष्ण भक्ति छोड़ के दूसरा कोई वस्तु कामना करता है वो अपने आप को आत्मवंचना करते, वो व्यक्ति दुस्संग है, उनका संग नहीं करना चाहिए। दुस्संग कही कही तब आत्मवंचना। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें ज्ञात होता है ये व्यक्ति का जीवन शैली व कार्य प्रणाली किस प्रकार हमें करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम करें तो हमारा कल्याण होगा। जैसे यहाँ पर प्रभाजी तात्पर्य में दिया है ये वर्षा ऋतु जो आता है तो अमृत तुल्य ग्रीष्म का पकड़ ताम में उस पानी को अमृत तुल्य लगता है और व्यक्ति खुश हो जाता है। इसी प्रकार वैदिक ब्राह्मण का आदेश अनुसार जब बड़े बड़े राजा व व्यापारी यज्ञ करते हैं, भगवान का मंदिर बनाते हैं, तब सब लोग खुशी हो जाए। जैसे आज हम वृंदावन जाते हैं तो जब गोविंद देवी का मंदिर दर्शन करते हैं, राधा मदन मोहन जी का मंदिर दर्शन करते हैं, तो वहाँ बैठ के हम लोग यही कर्ता कहते हैं, क्या कहते हैं, जो रूप गोस्वामी पाद का एक ऐसा धनाढ्य शिष्य था जिन्होंने मंदिर बना के दिया। आज भी सब उनका चर्चा कर रहे हैं और जब तक वो सब रहेगा तब तक चर्चा करते ही रहेगा। तो अच्छा कार्यों का सुफल सब समय मिलता है। प्रभुपाद जी पूरा विश्व में प्रचार किया, जब तक विश्व रहेगा तब तक प्रभुपाद जी का नाम रहेगा, हर कोई कहेगा प्रभुपाद जी ने करके गया, प्रभुपाद जी ने करके गया, इच्छा हो चाहे अनिच्छा हो लोगों को बोलना ही पड़ेगा। ये अच्छा कार्य करने का जो फल लाभ होता है यही है। तो ये जो वैदिक ब्राह्मण वेद क्या वस्तु है, श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहा है प्रचोदिता जन पुरा सरस्वती वितर्षणता जस्य सतिंग श्रितिंग हृदि सलक्षणा प्रादुर्भूत किलाशत समय ऋषिनाम ऋषभ प्रसिद्धता। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी को भागवत कहने के लिए कहा तो उन्होंने सबसे पहले भागवत में स्तुति किया, ऋषिनाम ऋषभ प्रसिद्धता। जो ब्रह्मा का हृदय में सलक्षणा वाणी को प्रचार किया है व कृपापूर्वक आविर्भूत किया है, किस प्रकार, जब कारणोदोषाई विष्णु से ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ तो ब्रह्मा आविर्भूत होने के बाद स्वतत्व और परतत्व और साध्य साधन तत्व कुछ भी नहीं समझ पाया, खुद कौन है, किस लिए आया हूँ, क्यों हमारा यहाँ पर बैठ गया, अपना स्वरूप क्या है वो जान नहीं पाया। परतत्व बारे में उसको तो कुछ ज्ञान 50 साल तक कमल का नाल में घुसते ढूंढते रहा फिर भी कुछ नहीं मिला। तो साध्य साधन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भी ज्ञान उसको नहीं हुआ। लेकिन जब वही ब्रह्मा भगवान का शरणागत हुआ तब भगवान का कृपा से जो वेद लिखना व भगवान का वाणीभूता जो सरस्वती है उनका कृपा लाभ कर किया, और भगवत ज्ञान लाभ करने के बाद उनका भगवान जो अप्राकृत जगत से प्रपंच में लीला करते हैं उनका भी, उनका अवतार लीला का भी ज्ञान हो गया, और कृष्ण कृपा करके उनका नित्य चीज वैचित्रमय बाग विलास, भगवान का नित्य जो चीज वैचित्रमय बागविलास है, बागविलास मतलब कथा का जो सुंदरता बा बोलने का जो तारीख है, वो बागविलास उनका हृदय में प्रकाश हुआ। भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं, सब कुछ उनका हृदय में प्रकाशित हुआ। तब ब्रह्मा का हृदय से व कंठ से क्या उच्चारण हुआ, ओम और अथ, ये दो शब्द उच्चारण हुआ। जब ये दोनों शब्द उच्चारण हुआ तो यही इसी को कहते हैं वेद का आक्षरिक प्रकाश, जो ओम है। ओम जो शब्द है, ओम वेद का आक्षरिक प्रकाश है। और वो वेद उद्भूत किधर से हुआ, नारायण से, क्योंकि नारायण ने कृपा करके ब्रह्मा का जो अप्राकृत शुद्धा सरस्वती का कृपा लाभ कराया। कब कृपा लाभ कराया, जब उन्होंने भगवान का शरणागत हुआ। हम लोग जो ज्ञान और वैराग्य के लिए प्रयासरत है, हम लोग सोचते हैं ना, हम ही बुक लेके हम लोग रटते रहते हैं, हमें भी कुछ श्लोक याद हो जाए, हमें भी कुछ वैराग्य आ जाए। लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य जो भक्ति करेंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा, इसके लिए अलग प्रयास करने का आवश्यक नहीं है। ज्ञान और वैराग्य कभी भी भक्ति का अंग नहीं है। भागवत में 11 कंड में देखो, वहाँ उद्धव गीता में भगवान ने कहते हैं ज्ञान और वैराग्य कभी भी भक्ति का अंग नहीं है, लेकिन भक्ति का सहायक है। पहले पहले ज्ञान भक्ति के लिए कुछ सहायता कर सकता है, बाद में ज्ञान भक्ति का कुछ भी सहायता नहीं करता है। अगर ज्ञान के युक्त और भक्ति करने जाएगा तो ज्ञान मिश्रा भक्ति हो जाएगा, जो भगवान को पसंद नहीं है। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा नशोकांति सम सर्वस्व भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ये ज्ञान जो होगा तो सम सर्वेश भूतेषु, ये सब होने के बाद ही मेरा भक्ति लाभ होगा। तो ज्ञानमेश्वर भक्ति से भक्ति श्रेष्ठ है। जिसको भक्ति लाभ हुआ उसका ऑटोमेटिकली ज्ञान हुआ और उसको ऑटोमेटिकली वैराग्य भी आएगा। जैसे जब संसार का सबसे उच्च पदस्थ कर्मचारी रूप और सनातन, करोड़पति भी अरबपति क्या मालूम क्या है, नाव भर भर के सोना का मुद्रा लेके जा रहे थे, जब नौकरी से रिटायर हो गया, स्वेच्छा सेवा लिया, यहाँ मन नौकरी नहीं करेगा, तो नाव भर के स्वर्ण मुद्रा लेके जा रहा था। तो ऐसा व्यक्ति भी जब महाप्रभु का कृपा हुआ तो क्या किया, कांथा करंग्याम और कंगाल भक्तगण वृंदावन आये तारे करह पालन। यही सब लोग जो इतना ऐश्वर्यवान था, इतना संपत्ति था, इतना जागतिक सम्मान था, लेकिन वो लोग भी बहिर्वास और एक पंथा ले करके हरिनाम करने लगा। तो जो भक्ति उत्पन्न होगा तो जागतिक कोई भी वस्तु उनका कोई कार्य में नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि हमारा भक्ति उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा स्वभाव किधर जा रहा है। जागतिक पदमर्यादा रघुनाथ दास गोस्वामी, अच्छा कुलीन घर में जन्म, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा हुआ सब कुछ छोड़ करके सड़ा हुआ राइस खाने लगा। अच्छा राइस को ताक करके जो सड़ गया, जो गाय भी नहीं खाता है, उसको अमृत बोल के खा रहा है। तो भक्ति 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 करने से भक्ति होने वाला नहीं है। भक्ति क्या वस्तु है वो भी जानना जरूरी है। जब भक्ति उत्पन्न होगा तो विषय से ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। जब तक विषय आसक्ति बना रहता है तब तक समझना चाहिए कि अभी हम भक्ति का द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया है। जब भक्ति होगा तब ये जो विषय है, विषय विष्ठावत ताग करने का इच्छा होगा। लेकिन अगर कहा जाए ध्रुव महाराज बा प्रहलाद महाराज, भागवत में इसका व्यतिक्रम भी है, भगवान ने आशीर्वाद दिया 36,000 साल तक आप इस संसार का संसार में सुख भोगो, तो क्या ये लोग का भक्ति नहीं था? अगर ये लोग का भक्ति था तो भगवान ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? अगर इसका भक्ति नहीं था तो भगवान इसको दर्शन कैसे दिया? तो भक्ति ठाकुर के दर्शन दिया, तो भक्ति का आनुषंगिक भक्ति का फल क्या संसार में रह करके विषय भोग करना? नहीं, भगवान चाहते हैं कि संसार में अगर हमारा भक्त लोग निवास करेगा तो हमारा भक्ति का प्रचार होगा। और जब भक्ति का प्रचार होगा तो देखिए राजा भक्ति कर रहा है तो बाकी प्रजा लोग भी ऑटोमेटिकली भक्ति करेगा। ये प्रभुपाद अमेरिका किस लिए गया? अमेरिका अगर भक्ति करेगा तो पूरा विश्व करने वाला है, क्योंकि सब अमेरिका का अनुकरण करने वाला है। तो भक्ति की प्रभुपाद जा अरब कंट्री बा पाकिस्तान जाके भक्ति प्रचार नहीं कर सकते, बोले वह कुछ तो होने वाला नहीं है। बड़ा व्यक्ति उनको एक तत्व श्रेष्ठ तरोजना सजत प्रमाण कुरु से लोकस्थ तदन वर्त थे। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है लोग उनका अनुगमन करता है। तो बड़ा व्यक्ति अगर हरिभक्ति करे तो बड़ा व्यक्ति जो माला कर रहा था हमें करने में क्या तकलीफ है, हम भी करें। तो इस प्रकार ये लोग का जो पांडव लोग का जो लास्ट में संपत्ति प्रदान ये भगवान ने दिखाया, ये सब संपत्ति होते हुए भी ये लोग भोग में आसक्त तो नहीं होता, ये भी एक बात है। क्या ध्रुव महाराज आसक्त तो हुआ था? क्या प्रहलाद महाराज भोग में आसक्त तो हुआ था? क्या पांडव लोग भोग में आसक्त तो हुआ था? सब कृष्ण सेवा तुम्हारो कनक भोगे रजनक कनकर दारे सेवा माधव, संपत्ति है भगवत सेवा, यज्ञ करने लगा, तपस्या करने लगा, दान करने लगा, ये सब करते रह रहा वो लोग। क्योंकि वैदिक ब्राह्मण का निर्देश अनुसार ऐसा कर, जब जब ब्रह्मा का कंठ से ओम अर्थ शब्द हुआ तो ये वेद शब्द कहा जाता है, वेद का ये पहला आक्षरिक शब्द। इसलिए वेद का अपर नाम क्या है? स्वयंभू, जो स्वतः प्रकाशित है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। क्यों श्रुति कहते हैं? क्योंकि उस समय वेद को सुनने से धारण किया जाता था, उसमें लिखा पढ़ा नहीं था। आज जैसे ग्रंथों में है उसमें ऐसा नहीं था। गुरु वेद को उच्चारण करता था, वेद मंत्र शिष्य सुनते थे और सुनने के द्वारा इनको वेद मंत्र याद हो जाता। वेद उपोरेश मंत्र है, धर्मस्तु साक्षात भगवत परिणतम, प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत जगह में दिया है। वेद शास्त्र स्वयं भगवान का श्रीमुख निश्चित वाणी है और सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को भगवान ने एक इसको पाठ कराया था। वेद शास्त्र क्या है? वेदयति धर्मं ब्रह्मच वेद, वेद शास्त्र धर्म का स्वरूप है जो ब्रह्म को जानने का सहायक है, इसे वेद शास्त्र कहते हैं। भगवान गानं मे परम गुज्जं जद विज्ञान समन्वितं तदंग स रहस्यं च घृणानं गदितं मया, घृणानं गदितं मया, हमें कोई वस्तु जब तक आशीर्वाद का रूप में नहीं मिलता है तब तक अपना बुद्धि वृत्ति के द्वारा उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए दीक्षा बना ले। दीक्षा का अर्थ क्या है? आशीर्वाद। माला तो स्टॉल में मिलता है, माला मिलता है, झोला मिलता है, काउंटिंग मिलता है, वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र लिखा आप भी जॉब कर सकते हो, लेकिन इसको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको प्रेम रूप फल नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये भी हो सकता है गुरु उपज्ञ रूप अपराध भी हो सकता है दस नाम अपराध में। इसलिए दीक्षा अर्थ क्या है? जो हमने शरणागत हुआ, आज जब हम शरणागत होते हैं तो हमको कृपा करते हैं, दीक्षा का अपर नाम है कृपा। तो जब ब्रह्मा ने भगवान को शरणागत हुआ तो भगवान ने आशीर्वाद किया, ज्ञानं गदितं, गानं में परम गुज्जं जद विज्ञान समन्वितं, मेरा ज्ञान परम गुज्ज है, गीता में कहा ना, ये मैं अभी तुमको इससे भी बड़ा ज्ञान का गुज्ज गुज्जतर गुज्जतम तीनों ज्ञान गीता में है। तो ये ज्ञान का मैं तुम्हें उपदेश दूंगा जिससे जानकर संसार में कोई वस्तु जानने का शेष नहीं रहेगा। तो गानों में परम गुज्ज में परम गुज्ज ज्ञान तुम्हें प्रदान करूंगा, जो विज्ञान समन्वित विज्ञान शब्द उसको कैसे आचरण करना है। ज्ञान मिल गया सबको, भाई राइस पानी डालो, राइस डालो, गैस में बैठाओ, भात बन जाएगा, ज्ञान हो गया, बना पाओगे? गैस दे देगा, पानी दे देगा, राइस दे देगा, अब चालू करके राइस बना के दिखाओ, प्रैक्टिकल कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए जद विज्ञान, जद विज्ञान समझ, विज्ञान सहित मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिखा रख के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं तुमको आशीर्वाद कर सिखा के दे दूंगा। तद अंग सो रहस्यम, उसका अंग क्या है साधन भक्ति, रहस्य क्या है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति, अभिधय भक्ति, प्रेम भक्ति, तीनों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, वो मैं तुम्हें आशीर्वाद कर रहा हूं। उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। जब ऐसे आशीर्वाद किया तब इस जगत में वेद वाणी का प्रचार हुआ, शब्द ब्रह्म, परब्रह्म, उपशांत, इस प्रकार साधु शब्द ब्रह्म वेद, परब्रह्म भगवान, उपशांत भौतिक भौतिक जगत में खुबी तो होने का कारण उपस्थित होते हुए भी जिनका चित्त खुबी तो नहीं होता उसको कहते उपशांत। भौतिक जो बहुत सारे खुब का कारण है, दुख का कारण है, सुख का कारण है, हताश का कारण है, बहुत सारे कारण है भौतिक जगत में, लेकिन ये सब से जिसका चित्त विगलित तो नहीं होता है, जिससे इसके चित्त इसमें रमते नहीं है, विगलित शब्द रंग हो जाएगा, जिसका चित्त इसमें रमते नहीं है निर्विकार, उसको कहते हैं उपशांत। तो ये उपशांत इस प्रकार साधु का मुखार बिंद से जब कृष्ण कथा का श्रवण किया जाएगा तब अज्ञान अंधकार दूरीभूत होगा। वेद कितना है? चार, ऋक, साम, जजु और अथर्व। हर वेद में दो अंश है, एक का नाम मंत्र, एक का नाम ब्राह्मण। और वेद में अगर यज्ञ करना है तो वेद में जो विहित मंत्र है उसका उच्चारण करना आवश्यक है, और जो मंत्र है वो ब्राह्मण अंश में उसका अर्थ दिया गया है, याद रखो, याद रहेगा। वेद चार है, उसका दो पाठ है, एक मंत्र एक ब्राह्मण। मंत्र हवन के लिए काम आता है, मंत्र का अर्थ ब्राह्मण में दिया हुआ है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण अंश वर्ग के भाग है वेद का, उसमें जो अर्थ दिया गया है। वेद में छह प्रकार का शिक्षा है, क्या क्या है? छह अंग है वेद में, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा किसे कहते हैं? विष्णु सूक्त, जैसे पुरुष सूक्त है, नारायण सूक्त है, इसका जो उच्चारण करने का जो शास्त्र में दिया गया है उसका नाम शिक्षा। ओम सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वित्या अत्यातिष्ठ दशांगुलम, इसका जो उच्चारण करने का जो शिक्षा दिया गया है जो शास्त्र में, उसको कहते हैं शिक्षा। और कल्प, कल्प किसे कहते हैं? हवन इत्यादि कार्यों में कौन सा पहले करना चाहिए, जो कौन सा बाद में करना चाहिए, जिस शास्त्र में इसका विवृति किया गया है उसको कहते हैं कल्प। जैसे भगवान का मंदिर पूजा करने के लिए आचमन करना चाहिए, फिर अंग शुद्धि, कर शुद्धि, अंगुल शुद्धि, हृदय शुद्धि, मन शुद्धि, फिर भूत शुद्धि, ये सब शुद्धिकरण करने के बाद आसन शुद्धि, घंटा शुद्धि, पुष्प, ये सब करने के बाद तभी होता है। ये जो विधि है इसको कहते हैं कल्प। इसका बाद व्याकरण, शब्द और पद, इसको निर्भुल उच्चारण करने का जो तरीका है वो जिस शास्त्र में दिया गया है उसको कहते हैं व्याकरण। जैसे तीत अंत्य शीत अस्त मी वस्मस ते आते अंत्य से आते दे ए बहे महे, ऐसा करके व्याकरण है। ये धातु आत्मनिपद, ये क्रियापद, इसका विभक्ति, इस प्रकार करके दिया गया है। तो ऐसा जिसमें दिया गया उसको कहते हैं व्याकरण बा ग्रामर। और निरुक्त, निरुक्त क्या है? वेदोक्त पद का बा शब्द का जो अर्थ निर्णायक है, जिस शास्त्र में इसको अर्थ को निर्णय किया गया, निर्णय किया गया, उसको कहते हैं निरुक्त। अभी आता है छंद, छंद किसे कहते हैं? पद्य छंद, छादक श्रुति, किस भाव में पाठ करना चाहिए। आप लोग एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी पद का स्तवावली, उसमें गोविंदा विरुद्धावली है। गोविंदा विरुद्धावली अगर पाठ करोगे तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन रूप गोस्वामी पद उसमें एक कोड दिया है, जिस व्यक्ति में व्यक्ति का संस्कृत का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति इसको मत पढ़ा करे, कि उसमें जो शब्द का जो विन्यास है अगर बराबर उच्चारण किया जाए तो जैसे समझो कोई मेघ गर्जन हो रहा है, वर्षा का समय में पूरा घनघटा मेघ हो और उसका मृदुमंद जो गर्जन है, आप कोई अगर ऐसा ही कोई पाठ करे मंदिर में तो आप ऐसा ही सुनाई देगा जो किधर मेघ का गर्जन हो रहा है। इतना सुंदर छंद है, गोविंद बिरुदावली उसका नाम है, रूपी गोस्वामी बाद में रचना किया। तो उसमें बहुत सारे छंद दिया गया है, भागवत में अष्टादश छंद है और बिलाप पुष्पांजलि में भी अष्टादश छंद है, नहीं यार राधारस सुधान जी में अष्टादश छंद है, सब छंद दिया हुआ है। किस छंद क्या किस प्रकार पाठ करना है, किसका आगे किसके पीछे लेना है, इसका बुक है जो हरिदास दास भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का समय उन्होंने एक अभिधान रचना किया। जगत में इतना जितना सारे शास्त्र है और जगत में जितना सारे शब्द है सब शब्दों का अनुवाद दिया गया है और सब शास्त्रों का सारांश दिया गया है और उसी में ये सब का दिया गया है। दोनों बुक कम से कम इतना ऊंचा होगा, बड़ा है, लेकिन दोनों बुक मेरा पास है अवश्य ऐसा ऐसा नहीं है। आज दोनों बुक का आद्य अंत में पूरा पढ़ा, ऐसा नहीं पाठ नहीं किया, ऐसा रखा हुआ नहीं है पूरा, चाहे हमको तीन चार साल लगा लेकिन हमने पूरा का पूरा पाठ किया, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है देख लिया। तैसे है तैसे ये सब ग्रंथ मिलता है, तो इसको बोलता है छंद। ज्योतिष भगवान का पर्व महोत्सव, जैसे अभी हम लोग अभी एकादशी किया ना, वो एकादशी नहीं था वो द्वादशी था, उसका अगला दिन एकादशी था, लेकिन पर्व महोत्सव का निर्णायक जो ग्रंथ है उसको कहते हैं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। आज चंद आज सूर्य ग्रहण है लेकिन इंडिया में नहीं है, टेंशन मत लेना, आज का ग्रहण इंडिया में नहीं है। तो ये सब जो निर्णायक करते उसको कहते हैं ज्योतिष। तो ये तो क्या होगा, वेद का छह अंग क्या क्या है, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष। तो पहले हुआ वेद चार उसका दो पाठ उसका छह अंग हो गया। अभी पूरा वेद को तीन भाग में विभक्त किया जाता है, कर्मकांड देवता कांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में यज्ञों का कथा कहा गया है, देवता कांड में जगत में जो देवी देवता लोग हैं उनका उपासना का वर्णन किया गया है और ज्ञान कांड में ब्रह्म विद्या है। मैं वेद लेकर आया, मेरे पास वेद भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं चार वेद चार का चारों वेद है, उसमें एक जगह में लिखा गया है कि आप किसी का अगर क्या बोलते हैं वशीभूत करना चाहते हो तब इस मंत्र का जप करो, आप उसको बस में कर सकते हो, ऐसा सब है लिखा हुआ, ऐसा नहीं जो लिखा हुआ नहीं है। तो पूरा उसको हम पढ़ा नहीं है कि वो रख दिया है, घर में सब कुछ हर ग्रंथ घर में रहना चाहिए, पैसा आते रहता है जाते रहता है, रोज में किसी के पास स्थिरता नहीं होता है, लेकिन ये सब अगर करके रख लिया जाए तो क्या होता है एक संपत्ति होता है। जैसे देखो चारों वेद 108 उपनिषद आप ढूंढोगे तो हर किसी के पास नहीं मिलेगा, कि हम अपना मिला हमको हम पैसा था ला के खरीद करके घर में रख लिया है घर में, कभी कोई उपनिषद देखना है उस उपनिषद में क्या लिखा है पार्टी करो पढ़ो मिल जाएगा आपको। ये सब रखना आवश्यक रहता है, पैसा क्या आते रहता है जाते रहे, कब आएगा कब जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ रहेगा तो बोलेगा हाँ कुछ ना कुछ करके दिया है। रूपा जी की बोलता है अगर ये बुक एक व्यक्ति इस जन्म में कोई ना पढ़ा उसका जन्म में भी नहीं, तीसरा पीढ़ी का भी कोई ये बुक पढ़ेगा तो भक्त बन जाएगा। इसको क्या इसका नाम क्या है, वाणी सेवा। सेवा बहुत प्रकार का है, वाणी का सेवा, भगवान का वाणी शास्त्र में लिखा गया है, कोई ना कोई इसका प्रिंटिंग कर रहा है, उसका खर्चा हो रहा है, इसको अगर हम लेते हैं तो उसका भी कुछ फायदा होता है और भगवान का वाणी का संरक्षण हो जाता है, इसको बोलता है वाणी सेवा। गौरव क्या नाम है इसका, विनोद वाणी, गौरव विनोद वाणी सेवा एक लेख है गौड़ियों का, बहुत बड़ा लेख है। तो ये सब कभी कभी इच्छा होता है ये सब लाके बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या कभी कभी ये भी होता है ये सब बोलने से फायदा क्या होगा, कुछ फायदा होने वाला है ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज को क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपरली धारण करने का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है भाई कुछ बोल के गया कुछ नहीं हुआ। पांडित्य प्रतिभा दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसमें एक जगह में प्रभुपाद का जो धनामृत है उसमें लिखा गया है, देखो जिस प्रकार हरि कथा बोलो जिससे लोग भगवान में रुचि हो, ऐसा ना बोलो अपना पांडित्य जाहिर कर कुछ बोल के चला गया, लोगों के सिर में इधर घुसा उधर बाहर गया, तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। सिंपल हरिकथा, सिंपल चीज बोलते जाओ, भगवान का भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का भक्त लोग का आचरण, हरिनाम कैसे करना चाहिए, ये सब बोलो ठीक है, बाकी आगे कुछ बोलने का आवश्यक नहीं है। ते कर्मकांड दो भाग में भाग है, एक सकाम है और एक निष्काम है। सकाम कर्म का लक्ष्य अयिक सुख और परलौकिक सुख, स्वर्ग सुख। यहाँ से इसके द्वारा संसार में निवृत्ति नहीं हो सकते हैं सकाम कर्म के द्वारा। निष्काम कर्म इससे कसाय, कसाय शब्द का अर्थ क्या है, जो वासना है, कर्म करने का जो वासना है उसको कहते हैं कसाय। ये वासना को दुर्विध करने के लिए निष्काम कर्म का कर्तव्य है। तो निष्काम भाव से अगर हम कर्म करें तो कर्म का जो वासना है वो दुर्विध होगा। तो इस देवता कांडों में अगर दो भाग है, सगुण और निर्गुण। इस जगह में जो गुण शब्द है उसका नाम है माइक गुण। सगुण देवी देवता को उपासना करने से भोग सुखमय मंत्र मिलता है। कोई दारिद्र दोष में है, इसको दारिद्र है, अन्नाभाव है, वो भी अगर वैदिक मंत्र का उच्चारण करे तो उसको भी सुख भोग मिल जाता है। लेकिन निर्गुण जो देवी देवता का उपासना है इससे संसार से निवृत्ति नहीं हो सकता है। ज्ञान कांडों का दो भाग है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। शास्त्रोक्त तो जो ज्ञान है इस साधारण ज्ञान को क्या बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान। और परब्रह्म का साक्षात्कार जो ज्ञान है उसको बोलता है अपरोक्ष ज्ञान वा विज्ञान, जस विज्ञान समन्वित। अपरोक्ष ज्ञान वा परब्रह्म का ज्ञान जब होता है तो भी माया का बंधन छिन्न होता है। भिन्दते हृदय गंधी छिन्दन्ते सर्व संशया क्षयन्ते जस्य कर्माणि दिष्ट एवा मनुष्यरे। ये तो समस्त संसार और कर्म बंधन का अवसान होता है, ते वेद है। ये सब जो जानते हैं इसको बोलता है वैदिक ब्राह्मण। यहाँ कहा गया था ना तात्पर्य, वैदिक ब्राह्मण का निर्देश अनुसार अगर कोई राजा व धनी व्यक्ति दुखी दरिद्र को दान करते हैं वा भगवान का मंदिर व भगवत भक्तों को भक्ति करने के लिए सहायता करता है, ये भी ख्याल रखना। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन उसमें भक्ति में उसका बाधा आ रहा है, सांसारिक दुश्चिंता व सांसारिक कष्ट। तो अगर हमारे पास संपत्ति है तो एवं भी तो भक्तों को पैसा देना भगवान को दान करना जैसा ही है। इसमें ये नहीं कि मंदिर में भुंडी में पैसा डालना और उसको हम क्यों दो, कोई उसमें पर भेद हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर दिया जाए तो क्या करेगा वो, उनका स्वच्छलता आएगा और वो भक्ति करेगा। अगर भक्ति करने के लिए अगर उसका इच्छा है तो एवं भी तो भक्तों को अगर आप सहायता करते हो तो वही दान आपको भगवत सेवा तुल्य व भगवत सेवा से बढ़कर होता है। तो भगवत सेवा से भक्त सेवा बड़ा है, ये ख्याल रखना चाहिए। और उसको भक्ति का सहायता करने के लिए उसका विषय भोग को लेकर दान नहीं देना चाहिए। जी भाई चलो भाई तिलक है, कंठी है, सब कुछ है, लेकिन ये है ये है, चलो भक्त है, इस हिसाब से भक्तों का परिभाषा हमें नहीं करना चाहिए। भक्त का परिभाषा उनका स्वभाव, उनका सदाचार, उनका इच्छा, ये देख करके होता है। नहीं तो क्या सब भक्त, एक जगह में भक्ति ठाकुर लेख लिखा है, भक्ति सुन ठाकुर का समय है, बोलते हैं अभी जगत में 3.5 करोड़ गोरी लोग हैं लेकिन सब लोग भक्त नहीं हैं, सबको भक्त नहीं कह सकते हैं, लेकिन सब कोई गौरव दास तो है, क्योंकि महाप्रभु को थोड़ा बहुत तो मानते हैं। भक्त और गौरव दास, भगवान को मानना एक बहुत बड़ा वस्तु है। ये भगवान है इसको मानना, ये भी एक कितना बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो भी ये समझ पाएगा भगवान है। ये मूर्खों का काम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कम से कम इतना तो है, तो स्थिति जो भी है। तो इस प्रकार वेद को, इससे वेद कहते हैं, वेद के इतना भाग है ये सब है। अरे वैदिक ब्राह्मण का आदेश अनुसार जिस प्रकार ग्रीष्म का बाद वर्षा ऋतु आते हैं तब जगत खुश हो जाता है, इस वैदिक ब्राह्मण का अंडर में रह करके अगर राज्य परिचालन किया जाए वा धनाढ्य व्यक्ति अपना धन को भगवत सेवा में विष्णु वैष्णव का सेवा में प्रयोग करता है तो अमृत तुल्य होता है, वैकुंठ का दार स्वरूप हो जाता है। चलो हरे कृष्णा। अभी कभी आएगा तो उपनिषद बोलेगा, फिर एक दिन वेदांत सूत्र बोलेगा। फैक्ट्री है, चिंता मत करो।